सभी कृपा करके हाथों से तालियों का सेवा करें। मन को भगवान के नाम में पूरी तरह से एकाग्र करें। मन से भी ये मन घर में है, बाजार में है, पर अभी हरि नाम में लगाइए।
Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्णा कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी बीआई फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड द मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गिरिधारी गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर नीताय की श्री ल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुरा की ऑल ग्लोरीज टू द समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज to the assembled devotees. All glories to Sri Guru Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Savior of the whole world, the most merciful, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Gaur-hari Prema-anande, Hari-hari Bol, Hari-hari Bol, Hari-hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam Namaskritya, Naram Chaivo Narottamam, Devim Sarasvatim Vyasam, Tato Jayamudiraye. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagvata sevaya bhagavati uttama sloke Bhaktira Bhavati Naishtaki Bhaktira Bhavati Naishtaki Bhaktira Bhavati Naishtaki Granthraj Srimad Bhagavatam Mahapuran Skandadas अध्याय सात जिसका शीर्षक है त्रिना व्रत का उद्धार। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, गोपाष्टमी की, गोष्ठाष्टमी की, श्रीनिवास आचार्य जी की, गौर हरि प्रेमानंदे। श्लोक श्रृंखला साथ आप श्लोक को बोर्ड में देख सकते हैं। क्षमा करें, श्लोक श्रृंखला छः श्लोक को बोर्ड में देख सकते हैं और मेरे बाद शब्दों का उच्चारण करते हुए प्रभुपाद जी के इस प्रातः नित्य भागवत कक्ष में सत्र में हम अपने आपको इस श्लोक से परिचित करते हुए इसका उच्चारण भी करेंगे। तो आइए मेरे बाद आप सब एक साथ बोलिए। औतानिका औत्सुकया मनः औतानिक का औत्सुकय मनः मनस्विनी समागतं पूजायति व्रज औ वर्जाओ का सा ना एव अश्रीनाथ वै रुदितां सुतस्य सा रुदान सत्स्तन आरती चरणो उदक शिपत चरणो उदक शिपत। औतानिका सुकया मना मनस्विनी औतानिका औत्सुकया मना मनस्विनी समागतं पूजयाति सुतस्य सा रुदन स्तनार्ती चरणो उदक्षिप रुदन स्तनार्ती चरणो उदक्षिप औतानि कौशी औतानि कौसुत सुकया मना मनस्विनी औतानि कौसुकया मना मनस्विनी समागतन पूजयाति व्रज सौसक नैवाश्विनोद्वैरुदितां सुतस्य सा रुदान स्तनार्ती चरणो उदिक्षिपा औतानि कौसुकया मना मनस्विनी समागतन पूजयाति व्रजौकसा नैवाश्विनोद्वैरुदितां सुतस्य सा रुदान स्तनार्ती चरणो उदिक्षिपा औतानि कौसुकया मना मनस्विनी समागतान् पूजयाति व्रजौकसा नैवाश्विनोद् वैरुदितां सुतस्य सा रुदान् सुदान स्तनार्ती चरणो उदीक्षिपा समागतान पूजयति आज कौशक नैवाश्रुतां सुतस्य वा रुदां स्तनाति चरणो उदीक्षिपा अवतानि कौसुमनस्विनी समागतान् पूजयति नैवाश्रिणोद्वैरुदितां सुतस्य सा रुदां स्तनाति चरणा उदीक्षिपा माताए अवतानि कौसुकय मना मनस्विनी समागतां पूजयति वरशका नैवाश्रिणोद्वैरुदितां सुतस्य सा रुदां स्तनार्ति चरणा उदीक्षिपा मनस्विनी समागतां पूजयति व्रजोक्तसा नैवाश्रुणोद्वैरुदितां सुतस्य सा रुदां स्तनाति चरणा उदक्षिपा शब्दार्थ बड़े ध्यान से श्रवण करें। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज जी द्वारा उच्चारित श्लोक है, अर्थात निगम कल्पत्र गलितम फलम सुखम होकर अमृत। ये अमृत सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से आ रहा है। भगवान रोए तो एक पूरा अध्याय उस पर सुखदेव गोस्वामी महाराज, इतना भगवान के प्रति रति है, क्योंकि उनका मति भगवान में है, तो यही हम सब का गति होना चाहिए। भगवान ने आंख क्या बंद कर लिए तो पूरा अध्याय पूतना वध का उसी के ऊपर। भगवान ने रोए तो उसके पर ये पूरा अध्याय, रोए और पांव ऊपर के रुदन लास्ट लाइन देखे, रुदन स्तन आरती चरणों उदक्ष शिपत। भगवान ने रोए और पांव ऊपर कर लिए, इस पे पूरा अध्याय। यह है भगवान के बाल लीला, इतना मधुर, इतना मधुर कि सुखदेव गोस्वामी महाराज बड़े बारीकी से भगवान के एक एक अंगों का हिलना डुलना का वर्णन करते हैं। जिस भगवान के बाल लीला को सुनने के लिए स्वयं भगवान को जगन्नाथ बनना पड़ा, रोहिणी माँ जैसे महान भागवत जब भगवान का लीला श्रवण कराए रानियों को द्वारका के, तो भगवान दो हाथ उसके अंदर चले गए, आंख बड़े हो गए, कान के चित्र जो है एकदम बारीक हो गए, मानो कि कान है ही नहीं, ऐसे हो गए। तो यह है भगवान का बाल लीला का सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज जी द्वारा। तो शब्दों को ध्यान से श्रवण करें, एकाग्र करके आप कृपा करके भाव विभोर मत हो जाइए, नहीं तो रस की धारा जो आपने संग्रह किया तो उतना ही रह जाएगा, और रस भी रसा कृष्ण का रस जो है उसे पीते जाना चाहिए, पीते जाना चाहिए। तो थोड़ा सा भाव को थोड़ा रोक के रखिए, पूरी तरह से भाव विभोर होकर स्तंभित ना हो जाइए। तो ध्यान शब्दों पे रखिए, शब्द अर्थ में रखिए। औतानिक औत्सुकय मनः माता यशोदा बोलते रही, ये लंबा वाक्य है इसीलिए मैं दो दो शब्द का उच्चारण करूंगा, आप भी मेरे बाद इसी प्रकार से उच्चारण करते रहिए। माता यशोदा बच्चे का उत्तान उत्सव मनाने में अत्यधिक व्यस्त थी। मनस्विनी भोजन वस्त्र आभूषण तथा गव्य बांटने में अत्यंत उद्धार, इसमें व्यस्त हो गई माँ यशोदा। माँ यशोदा ही नहीं और जितने भी नंद महाराज ब्रजवासी सब व्यस्त हो गए, जितने ब्राह्मण थे उनको वस्त्र इत्यादि देने में व्यस्त हो गए। कितने बारीकी से सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे, मानो कि वो वहीं पे उपस्थित आंखों देखा हाल, रनिंग कमेंट्री बोलते हैं। समागतम समागतान एकत्र मेहमानों को, यानी कि बहुत सारे मेहमान थे और उन सब को एक एक गिफ्ट दिया जा रहा है। गिफ्ट यशोदा मैया दे रही, आप यहां पे भाव विभोर हो रहे हैं, मूर्छित अवस्था में। क्या गिफ्ट दिया होगा सोच रहे हैं, हाँ क्या गिफ्ट दिया होगा, और इसी सोच में वो पड़ गए। तो इस प्रकार से क्या गिफ्ट दिया वो बाद में पता लगेगा, पर आगे भी हम श्रवण कर लेते हैं। पूजयति उन्हें तुष्ट करने के लिए, किसको तुष्ट करने के लिए, जो मेहमान आए थे उन सबको। समागतान, ये आवाज कुछ या मेरा गला बैठ रहा है या ये माइक बैठ रहा है। तो ये शायद मेरा गला बैठा है, बीच बीच में आवाज बंद हो रहा है। व्रज औकस, ब्रजवासियों को ना नहीं एवा निश्चय ही अश्रिनोता यहाँ पे असुना अष्टनोत लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं इसको, अष्टनोत यानी कि वे सुने, ठीक है वह सुने, अष्टनोत यानी कि सुना, डिड हियर यानी कि सुन लिया उन्होंने, भाई निश्चय ही रुदितां रोना। ये तीसरा लाइन जो है ये कृष्ण का वर्णन कर रहा है, कृष्ण रोए पर न एव अश्नोद वै, वो लोग सुने नहीं कृष्ण का रोना, क्योंकि बहुत बिजी थे, बहुत कुछ चालू था, गिफ्ट देना आशीर्वाद लेना ये सब चालू था, तो कृष्ण रोए पर कोई सुने नहीं। सुतस्य रुदितां रोना, सुतस्य बच्चा का, बच्चे का, सा यशोदा रुदां रोना, स्तन अर्ति कृष्ण जो माता के स्तन का दूध पीना चाह रहे थे, चरणोत्क्षिप्य क्रोध में मारे अपने दोनों पांव इधर उधर फेंक रहे थे, ऐसा कर रहे थे, कौन कर रहे थे, कृष्ण कर रहे थे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद उत्तान उत्सव मनाने में मग्न उद्धार माता यशोदा मेहमानों को स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र गव्वे मालाएं और अन्न बैंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। ये पहला दो लाइन का हो गया। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। ये तीसरा लाइन, अब चौथा लाइन जो मेन है। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था, अतः क्रोध में आकर वह अपने पांव ऊपर की ओर फेंकने लगा। तात्पर्य कृष्ण घरेलू चकड़े के नीचे लिटाई गए थे, किंतु वह चकड़ा वास्तव में सकटा सुर अन्य रूप था। यह असुर बालक को मारने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने सकटासुर को लात मारी, जिससे सारा भेद खुल गया। यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान कृष्ण सकटासुर को मार कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। कृष्ण की लीलाएं ऐसे ही हैं, वे अपनी माता का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया जिससे जिसे सामान्य लोग समझ नहीं सके। ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद देने वाली है और जो भाग्यशाली है वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्य कथाएं मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भूसा क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है, बुद्धि में भूसा रहता है यानी कि वो काम नहीं करता है, जान हो गया भूसा से, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग मुझसे क्रोधित मत हो जाए, मेरा कोई औकात नहीं है कि दुनिया वालों को भूसा भरा ऐसे बोलूं, पर प्रभुपाद जी के वाक्य है ऐसे। किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं, ये कथाएं इतने रोचक तथा प्रबुद्ध करने वाली है कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया और उनके चरण चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान को भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। केवल सुखदेव गोस्वामी नहीं, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से उनके चरण चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान के इस अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आया भक्तों का स्वागत। सर्वप्रथम विराजमान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप दया के मूर्ति, दया के सागर, दया के सिंधु भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौमाताएं और इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए जिन महा भागवत, जिन महान व्यक्तिगत व्यक्ति जिनके कृपा से आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के इस सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। परम मंगल श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये वैष्णव संतों का परम धन है। परमहंस चक्र चुड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन आनंद कंड भगवान वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकलादनी सर्जन सुहृद हलादनी कंसकुल सहारनी महारानी भगीरथ जी के दवलदारा किनारे में आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित जी को उन प्रभु के दिव्य कथा एवं लीला श्रवण करा रहे हैं। इस सत्संग का ऐसा प्रभाव है, वही परीक्षित महाराज जी जो कि प्यास से विवल होकर एक संत के गले में सर्प डाले, वही परीक्षित महाराज जी पिछले 3 दिन तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए ना वे शरीर को किसी प्रकार से आराम दिए, वो सोए नहीं। भगवान के इस कथा में इतना आनंद है, इतना सुख है कि जो इसमें रम लेता है वो देह आत्मा के स्तर से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इस संसार में भी लोगों को कथा अच्छी लगती है। हमने देखा कि लोग जब तक कथा चलते हैं ध्यान देते हैं, पर इस संसार की कथा अगर लंबी चले तो लोग बीच बीच में आराम भी करते, पर भगवान की कथा में इतना आनंद है, इतना आनंद है इसलिए एक संत कहते हैं, भोग रतो वा योग रतो वा, बोलते भोग में आप रत हो जाओ इसमें थोड़ी सी सुख है, योग में रत हो जाओ अर्थात थोड़ा सा शरीर को कष्ट देकर अष्टांग योग में रत हो जाओ, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, संग में रहिए लोगों के बीच में रहिए उसमें भी थोड़ा सुख रहेगा, या संग विहीन अकेले में पड़े रहिए एक कोने में इसमें भी थोड़ा सुख है। यश्य रमते यश्य ब्रह्मन रमते चित्तम नंदति 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 एवा, यश्य ब्रह्मने रमते चित्तम, जिसका मन भगवान में रम जाता है वो संत कहते हैं नंदति 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 एवा, वो वास्तव में परम सुख का अनुभव करेंगे, परम सुख का अनुभव करेंगे, परम सुख का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज 3 दिन तक अन्य अन्य भगवान के अवतारों का लीला श्रवण किए तो सुखदेव गोस्वामी महाराज चुप हो गए, तब परीक्षित महाराज कहा कि आगे भी कहिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा 3 दिन 3 रात बीत गई, अब कुछ खाइए थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए, इंटरवल है। नंदति 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 एवा, वास्तव में आनंद में इतने रम गए, बोले कि नहीं अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे उस आनंद कन भगवान रसराज रसिक शेखर कृष्ण के कथाओं का वर्णन करिए, वे अकेले रसामृत मूर्ति जो भगवान है वे अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करें उनकी कथा हमें श्रवण कराइए। नंदति 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 एवा, सुखदेव गोस्वामी महाराज देखते रह गए, वो कहने लगे आप ही तो थे जो प्यास से विवल होकर गले में शर्प लगाए, तो बोलता नहीं आपके भगवान के इस कथा में इतना आनंद है कि आप मुझे ना तो भूख सता रही है ना तो प्यास सता रही है ना तो नींद सता रही है, इतना आनंद है इतना आनंद है, अब मुझे उन भगवान की कथा को सुनाइए। तो इस प्रकार से वास्तव में अगर हम एक चित होकर भगवान के भक्ति में रत हो जाएंगे तो ऐसा समय आएगा कि हम देह आत्मा के स्तर से उठ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी तरह से रम गए, इतना आनंद है कि शरीर के इंद्रियों की मन की जो आवश्यकताएं हैं वो एकदम फीका पड़ जाता है। शरीर भूख प्यास शोक मोह से गुजरता है पर ये सब फीका लगता है। यह सत्संग, सत्संग का असली लाभ, इसलिए कहते हैं संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहित्वे निश्चल तत्वं निश्चलं तत्व जीवन मुक्तं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढमते। ओ संत कहते हैं कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढमते, सत्संगत्वं सत्संगत्वे निसंगत्वं, सत्संग में आइए। इस सत्संग में आने से हमें इस संसार से का संगति टूट जाएगा और निसंगत्वे निर्मोहित्वं, और इस संसार का संगति अगर टूट जाता है तो इस संसार के प्रति जो मोह है वो भी हट जाता है। फिर कहते हैं निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। अगर इस संसार से मोह हट जाता है तो सत्व के प्रति, सत्य के प्रति, तत्व के प्रति हमारा मन लग जाता है, और सत्य के प्रति अगर हमारा मन लग जाता है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्तम, जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो कहते हैं कि भगवान का, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर मूढ़मते, यानी कि मूढ़ लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मूढ़मते गोविंद का भजन कर। तो परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। पूतना का जैसे ही वध हो गया, मां यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति अपार अगाढ़ प्रेम और जागृत हुआ। मां यशोदा ने देखी कि गोपी का वेश बनाकर एक राक्षसी आई। इसके बाद कृष्ण, यशोदा मैया ने कृष्ण को अभी किसी और गोपी को नहीं दिए, गले से लगाए। इस पूतना वध के लीला से यशोदा मैया कृष्ण को और अपने निकट धारण करके रखे, मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी, कोई और गोपी को नहीं दूंगी। तो कोई गोपी कहता कि लाला मुझे दीजिए, तो थोड़े समय के लिए देते, फिर से चुरा लेते, बोलते ये भी पूतना नहीं होगा। इतना प्रेम पूतना के कारण यशोदा मैया के हृदय में जागृत हो गया। पूतना का जब वध हुआ तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं जितने भी गोप थे, जितने भी गोपियां थे, वे पूतना अष्टकम का उच्चारण करते हैं, 8 श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिसमें विष्णु के अलग अलग नाम का उच्चारण आता है। कहते हैं कि इनके आंखों का रक्षा कीजिए, इनके कानों का रक्षा कीजिए, इनके हाथों का, इनके पाँव का, सोते वक्त इनके रक्षा कीजिए, जागते वक्त इनका रक्षा कीजिए। ये पूतना अष्टकम का वर्णन करते हैं। 6 अध्याय में 8 श्लोकों में गोपियां 8 श्लोकों का वर्णन करते हैं। जिस 8 श्लोक का अगर कोई वर्णन उच्चारण करे, बच्चे के अंदर कोई भी दुख होगा, बच्चे के अंदर कोई भी कष्ट होगा, इन श्लोकों का उच्चारण करने से वो दूर हो जाएगा। ये भागवत का गौण फल है। मुख्य फल तो भागवत में ही रमने का, कृष्ण रसायन पीब, ये तो शरीर जाने वाला ही है, पर परीक्षित महाराज ने निश्चित कर लिया। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर तो जर्जर होने वाला है, वृद्ध होने वाला है, समय के साथ बर्बाद होने वाला है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम सतसंगे जर्जरम, ये गिर जाएगा, पतति अवश्यम, निश्चित रूप में ये शरीर गिर जाएगा। इस शरीर के 100 जोड़ है, हड्डियों के 100 जोड़ है, कितने 100, गिनती गिनती करके कुलशेखर आचार्य कहते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, कहते हैं कि यह शरीर जर्जर हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। एक समय एकदम फिट था, अब ढीला पड़ जाएगा। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवसम सतसंग सत जर जरम, ढीला पड़ जाएगा। किम रसायन, फिर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति क्यों दवाई मांग रहे हो शरीर को फिर से फिट करने के लिए, दवाई की दुकान में हॉस्पिटल में लाइन क्यों लगा रहे हो। तो बोलते हैं क्या करे, तो बोले कृष्ण रसायन नाम का जो दवाई है वो लेते रहिए, कृष्ण रसायन पीब। परीक्षित महाराज को पता है, पर शरीर का नाश होने वाले तक्षक से
पर कृष्ण की कथा में इतना आनंद ले रहे थे कि वे शरीर के कष्ट से परे हो गए और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से कह रहे हैं कि आप रुक क्यों गए हैं, पूतना का वध, भगवान का दिव्य जन्म तो बता दिया, भगवान के दिव्य कर्म पूतना का वध भी बता दिया, अब चुप क्यों हो गए? तो परीक्षित महाराज कहने लगे, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप में कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। गारंटी के साथ यही 100% 200% यही कानों को और मन को सुहावनी लगेगी, यानी कि संसार के बातें सुहावनी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, सुहावनी लगेगी। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का मन का मल तक्षण धुल जाती है। कपड़े को हम धोते हैं, शरीर को धोते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जले स्नानम दिने दिने धोते हैं, पर मन को कैसे धोएंगे? तो कहते हैं साकृत गीतामृत स्नानम। इन लीलाओं को श्रवण से मनुष्य के मन मैल से धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए आनाकानी करते हैं, नहीं नहीं आज समय नहीं है, आज पार्टी में जाना है, आज बहुत ही काम है, बोनस लेना है, दीपावली आ गया, व्यस्त है, आनाकानी करते हैं। किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वत ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। कौन कह रहा है ये बात? परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं। पूतना वध के बाद थोड़े देर के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज चुप बैठ गए, क्योंकि भगवान के यानी कि कृष्ण रसिक से करे, अकेले रसामृत मूर्ति, रस के मूर्ति है, अकेले रसामृत मूर्ति है, और भगवान को रस प्राप्त करने के लिए कर्मकांड नहीं चलेगा, यानी कि दिखावापन नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा उत्तेजित होना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा लालसा दिखाना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं पद्यावली में, कृष्ण भक्ति रस भावित मति, कृष्ण का भक्ति जो है रस से भरा हुआ है, क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी धन देना पड़े वो धन चुकाइए। महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी इस बात पे कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति को एक बीमारी पड़ जाती है तो वो एकदम से चटपटाने लग जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब जो भी धन लेना है ले लो, पर इस बीमारी से मुझे मुक्त करो। इसी प्रकार से इस भव रोग से हमें मुक्त होना है तो कितना भी धन हमें देना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, उस दवाई को ले लो इस रोग को मुक्त करने, जो भी करना पड़े करें, जरूर करना चाहिए, क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते। फिर आगे कहते हैं कि तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम, तत्र लौल्यम वो लालसा जो है कि मुझे कृष्ण का भक्ति चाहिए, वो लालसा जो है वो तड़प होना चाहिए, मुझे कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो लालसा अगर हो जाएगा, तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, जन्म कोटि सुकृति कुछ काम में नहीं आएगा, ये सुकृति जो है हमें अमीर बनाएगा, ये सुकृति जो है हमें एक अच्छा कुल में जन्म देगा, ये सुकृति जो है हमारे शरीर को सुंदर बनाएगा, ये सुकृति जो है हमें बुद्धिमान बनाएगा, पर कृष्ण का भक्ति के लिए लालसा होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे रोज बैठते हैं तन से, पर मन से जब बैठे तब भक्ति मिलेगा। तन से हम बैठ गए हैं पर मन से नहीं बैठते हैं, समाधि में मस्त हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तन यहां और मन कहीं और हो जाता है तो नहीं। लालसा होना चाहिए कि कृष्ण की कथा मुझे सुनना है, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो ऐसे कितने कथा में हम बैठे तन से, और कितने कथाओं से उठे फिर वापस कथाओं में बैठे, तन यही रहेगा मन भी यही रहेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, नवदीप में गोद्रुम द्वीप से जो मध्य द्वीप जाना था बाराती को, तो रात के समय थे, वो लोग बैठ गए एक नौका में, और नौका वाला ने कहा मैं रात हो गई नौका नहीं चल, बोला डबल पैसा लो, ट्रिपल ले लो, चलो 10 गुना ले लो। तो बोला ठीक है, और नौका वाला नौका चलाया, हाथ फिराया, सब लोग सो गए, सोचा कि नौका वाला सही आधा घंटे में पहुंचा देगा गोद्रुम से मध्यद्वीप कोलोद्वीप पहुंचा देगा। सुबह उठे तो बोले चलो आधा घंटे हो गया लगता है, पर देखा कि आधा घंटा क्या दिन हो गया, फिर सोचा हो चाहे ठीक है हो सकता है कि हम लोग अभी कोलोद्वीप पहुंच गए। तो देखा कोलोद्वीप ने गोद्रुम के दोद्रुम पड़े, वो नौका वालों को मारे, तो नौका वाला बोला मैं पूरा रात हाथ देखो मेरा थक गया है, मैं नौका का इस घुमाते रहा। तो फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा आप घुमा तो रहे थे पर नौका में जो लंगर लगा हुआ है उस लंगर को आपने उठाया नहीं, तो हम जहां थे वहीं पे पड़े रहे। इसी प्रकार से ये मन रूपी लंगर जो है इसे अगर हम भगवान की कथा में नहीं लगाएंगे, कितने भी कथा में आते रहे जाते रहे हम वहीं के वहीं पे पड़े रहेंगे। इसीलिए तन से भी उपस्थित रहना चाहिए और मन से भी उपस्थित रहना, तब ये लालसा होना चाहिए। जिसे परीक्षित महाराज के अंदर वो लालसा थी, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहा कि जब तक वो लालसा नहीं बताएंगे मैं कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कथा को आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तब परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, मुझे कथा श्रवण कराइए, क्योंकि कृष्ण की कथा ही कानों को और मन को असली सुख प्रदान करेगी। तब जाके सुखदेव गोस्वामी महाराज कुछ कहेंगे, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ाते हैं, यदि आप उचित समझे तो कृपा करके भगवान के इन लीलाओं को के विषय में कहिए। बस पुतना का वध तक आप रुक मत जाइए, आगे और सुनाइए, बताइए और आगे बताइए, बताओ ना। इतना लालसा कृष्ण भक्ति रस भावित मती, सुखदेव गोस्वामी महाराज रुक गए, बोले कि जब तक वो लालसा प्रदर्शित नहीं करेगा केवल तन से उपस्थित रहेगा तो मैं कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर परीक्षित महाराज ने कहा मैं गारंटी देता हूं कि मैं तन से ही नहीं मन से भी उपस्थित है, तो श्लोक नंबर 4 का भी 3 का भी उच्चारण कर, कृपया भगवान कृष्ण को की अन्य लीलाओं का वर्णन करे जो मानवी बालक के अनुसार, यानी कि भगवान मानव बालक के अनुसार करते हुए पूतना का वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए, उन कथाओं का भी वर्णन कीजिए। तभी सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा हाँ ठीक है, इसके अंदर लालसा ये जागृत है। मैं सोचा वो सो गए, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कृष्ण अब 6 दिन के नहीं 108 दिन के हो गए, तो कहते हैं कि माँ यशोदा पूतना के वध के बाद कृष्ण को हमेशा गले से लगाती थी और उस पर नजर रखती थी, मेरा बच्चा, तो रोज देखती थी, रसोई घर में जाती थी तो कृष्ण को पालकी में लेटाती थी, तो कृष्ण ऐसे सोते थे दाहिनी ओर, बच्चे इतने कमजोर होते हैं बचपन में कि वो जहां पे रखे वहीं पे ऐसे पड़े रहते हैं। तो कृष्ण ऐसे ही पड़े थे। माँ यशोदा इतना प्रेम करती थी, सोचा कि और कोई गोपी आएगा मैं इनके हाथ में नहीं दूंगा, कहीं वो पुतला ना बन जाए। तो जो भी गोपी आती थी लो फिर वापस लेती। नंद महाराज को भी नहीं देते थे क्योंकि देने की बुरी आदत हो जाएगी, तो फिर से कृष्ण को मैं किसी और को दे दूंगी। तो बोला नहीं। कृष्ण भी वात्सल्य रस का आनंद का अनुभव कर रहा था, यशोदा मैया के प्रेम का आनंद ले रहे थे। दिन बीतते गए, भगवान अब 30 दिन के 40 दिन के हो गए, भगवान अब 100 दिन के हो गए, 106 दिन के हो गए। और वो दिन आ गया जब माँ यशोदा ने कृष्ण को पालक की में रखे, सया सोने के लिए रखे, तो कृष्ण सो गए। कृष्ण सोते रहे, माँ यशोदा सब्जी इत्यादि काट कर वापस अपने बालक को देखे, कहीं और कोई पूतना तो नहीं आ गई। तो देखा कृष्ण अब बाएं से बाएं और रख के गई थी, तो कृष्ण अब दाहिनी ओर जाने का प्रयास कर रहा है और दाहिनी ओर वह लेट गए। माँ यशोदा हर 20 मिनट के बाद, जैसे बच्चा सोता है तो एक तरफ रखे तो उसके हाथ को दर्द होगा, तो माँ क्या करती है उसे पलट लेते हैं, ताकि नहीं तो क्या चमड़ी जल जाती है और फोड़ी आने लग जाते हैं। जैसे कोई वृद्ध अवस्था में बिस्तर में लेट जाता है, या खुदा ना करे किसी कोई अगर कोमा में पड़ जाए, जो नर्स है उसको बिस्तर में जब रखती है तो एक तरफ सोने से उनके चमड़ी जो है जल जाते हैं, फोड़ी आने लगते हैं, तो उसको पलटते हैं। तो माँ हमेशा 20 मिनट के बाद पलटती रहती, तो आज क्या देख रही है, 108 दिन के कृष्ण हो गए। कृष्ण बाईं ओर से अब दाहिनी ओर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने ही पीठ के बल अब कृष्ण आ गए, और पीठ के बल कृष्ण को देखकर वो बाएं ओर से दाहिने ओर गए। माँ यशोदा नाचने लगी, गाने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपार प्रेम के लहर उनके हृदय में प्रकट होने लगी और कृष्ण को छाती से लगाए नंद महाराज के पास नाचते नाचते गए। नंद महाराज से कहे, देखिए ब्रज एक ऐसा धाम है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं वहां पे हर एक चाल एक नृत्य होता है, तो नाचते नाचते गए और हर एक बोल एक गीत होता है। तो नंद महाराज से कहा देखो देखो देखो, तो नंद महाराज गोचारण कर रहे थे, गायों को गिन रहे थे, उनके इतने सारे तबेला है, गाय रहते हैं। तो बोला क्या देखो, आज लाला करवट बदल लिया। क्या लाला ने करवट बदल दिया, अब नंद महाराज नाचने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने लाला को गले से लगाने के लिए हृदय में प्रेम के लहर उत्पन्न हो गए। कहा कि लाला को लाओ, तो माँ यशोदा ने कहा नहीं लाओ, नहीं नहीं लाओ। फिर कहा कि आज हमारे लाला अपने ही बल से वे पलट गए, ओहो करवट बदल लिए, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। अब दोनों मिलकर नाच के कृष्ण को साथ में लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो पूर्णमासी के घर में गए, पूर्णमासी ब्रज में रहती है, ब्रज का देखभाल पूर्णमासी करती है, उनका बेटा सांडिल ऋषि है, वो बहुत बड़ा ब्राह्मण है। तो कहा आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन है। देखिए एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ब्रजवासी कभी कृष्ण को भगवान करके माने नहीं और मानेंगे भी नहीं, यह है ब्रजवासी। भौतिकवादी भी कृष्ण को कभी भगवान मानते नहीं है, क्या ब्रजवासी और भौतिकवादी एक जैसे हो गए और हम कहां फंस गए? हम ना तो ब्रजवासी है ना तो हम भौतिकवादी है, हम कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। हम ना तो ब्रजवासी है ना तो भौतिकवादी है, पर भक्ति में जैसे जैसे रत होते जाएंगे फिर पता लगेगा, एक समय आएगा कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, भगवान वैकुंठ के ईश्वर है, पर कृष्ण हमारे प्यारे लाला है। ब्रजवासी कृष्ण को कभी भगवान नहीं माने, ब्रजवासी हमेशा नारायण को भगवान माने। आज भी नंद महल में गोकुल में वो नरसिंह भगवान का विग्रह है जिसका नंद महाराज यशोदा मैया उसका उपासना करते थे, वो नारायण का मूर्ति मिलेगा पर कृष्ण का नहीं, कृष्ण को वो कभी भगवान नहीं माने, नारायण को माने। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस मेरे बालक को रक्षा करना, पूतना जैसे राक्षसी आई, फिर 108 दिन के बाद और राक्षस आते हैं, त्रिनावत इत्यादि। जब भी एक राक्षस मर जाते तो वो सोचते थे आज मैंने तिलक अच्छी तरह से लगाया, नारायण ने इनका रक्षा किया, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, सब नारायण करते हैं। तो ये ब्रजवासी है। तो वो गए पूर्णमासी के घर में, पूर्णमासी के पास सांडिल ऋषि के पास, सांडिल ऋषि ने तुरंत पंचांग खोले और देखे, अरे वाह आज तो बहुत ही शुभ दिन है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज तो बच्चे का, भागवत में लिखा है आज तो बच्चे का जन्म नक्षत्र का दिन है, अर्थात आज रोहिणी नक्षत्र है। और ब्रज में और आज वैदिक संस्कृति के अनुसार गांव में भी बच्चा जब तक 90 दिन का नहीं होता है तब तक घर से बाहर नहीं ले जाते हैं, और आज तक बच्चे को घर से बाहर नहीं लिया गया था। यह जो लीला है, इस लीला में पहली बार घर के दरवाजा से बगीचे में लेके जा रहा है। तो सांडिल ऋषि ने कहा आज का दिन अगर बच्चे ने करवट बदला तो बहुत शुभ है, बड़ा पावन पवित्र दिन है, आज आपको चाहिए सारे ब्राह्मणों को खूब दावत दे, ब्राह्मण भोज कराए, उनको खूब खूब वस्त्र आभूषण और गव्य दान में दीजिए, जितना दोगे उतना आप पाओगे। तो नंद महाराज तुरंत भागे और कहा कि आज सारे ब्राह्मणों को हम बुलाएंगे। सांडिल ऋषि ने कहा कि आज बच्चे को 108 दिन हो गया, आज चौथे बार कृष्ण के जीवन में रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। कृष्ण का जन्म कब हुआ? भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत है ना। भगवान सोचे ओ ओ ओ देवकी तो मेरी मां बन गई, पर रोहिणी मां अगर कंप्लेन कर ली तो कहा कि ठीक है उसको भी मैं संतुष्ट कर लेता हूं, रोहिणी भी मेरी मां है, इसलिए मैं रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत अपने आप को प्रकट करूंगा। तो रोहिणी नक्षत्र में वास्तव में भगवान रसराज है, रसिक शेखर है, रस के मूर्ति है, वे हम सबसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, देवकी को ही मां बनाना नहीं चाहते, रोहिणी को भी मां बनाना चाहते हैं, इतना ही नहीं हम सबको भी मां बनाना चाहते हैं, यानी कि भगवान हमारे होना चाहते हैं, भगवान भक्तों का होना चाहते हैं। भौतिकवादी लोग कहते हैं इस संसार में हर चीज को हम खरीद सकते हैं। हर चीज को, हर व्यक्ति को हम खरीद सकते हैं, पर भौतिकवादी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं खरीद सकते हैं। भगवान बिकने के लिए तैयार है, उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है, पर भगवान के भक्त जो है, भगवान का भक्ति रूपी धन देकर भगवान को भी खरीद लेते हैं, भगवान को भी अपना बना लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग भगवान बनना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो भगवान बनना चाहते हैं ये तो कितना तुच्छ विचार है। अरे भगवान बनना तो बहुत तुच्छ है, आप भगवान का बाप बना बन के देखिए, भगवान का मां बन के देखिए। भगवान अपने आप को बेचना चाहते हैं, भक्तों का बेटा या बच्चा बनने के लिए तैयार है। भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के बाप बनना बड़ी बात है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। और भगवान बाप बनना तैयार हो जाते हैं, पर भगवान को खरीदने के लिए भक्ति रूपी धन चाहिए, अर्थात वो राशि हमारे पास होना चाहिए। और भक्ति रूपी धन हमें कब मिलेगा? जब हम माला माल होंगे। और हम माला माल कब बनेंगे? जब माला को अच्छी तरह से फेरेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अपना धाम ही नहीं, अपने आप को भी अपने आप दे देंगे। तो भगवान रोहिणी को ही अपना माँ, देवकी को ही अपनी माँ नहीं, रोहिणी को भी अपनी माँ बनाने चाहते थे, तो रोहिणी नक्षत्र में। तो 27 दिन बीत गए, तो फिर से रोहिणी नक्षत्र आ गए, फिर 54 दिन, 54 सही है, 54 सही है, 27 और 27 कितना हो गया, हिंदी में बोलिए 54। तो 54 दिन के हुए, फिर से रोहिणी नक्षत्र आया, फिर से 27 दिन बीत गए, तो कितना दिन हो गया, 81 दिन हो गए। कृष्ण अभी तक करवट बदले नहीं। और फिर से जब रोहिणी नक्षत्र आ गई, भगवान कितने दिन के हो गए, 81 और 27 कितने हो गए। सांडिल ऋषि ने कहा ये वही नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, अर्थात बहुत ही शुभ है, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाओ। सारे ब्राह्मणों को बुलाए और मां यशोदा से कहा आप इन ब्राह्मणों को सुंदर खीर पकवान पुलाव पराठा रस मलाई रसगुल्ला खिलाओ। और मां यशोदा ने कहा आज मैं सबसे उत्तम कोटि का पकवान बनाऊंगी, ब्राह्मणों को संतुष्ट करूंगी। अर्थात एक बहुत मोटे बर्तन में दूध निकाले, स्वादिष्ट देशी गाय का दूध, 99,999,999 गाय का ताजा दूध को उबालने लगी और कहा कि आज इतना स्वादिष्ट पायसम बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी कि ब्राह्मण पीते 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 ही रह जाएंगे। उस दूध में मां यशोदा ने मिश्री नहीं मिलाई, शक्कर तो दूर की बात, उसमें उस पायसम को मीठा बनाने के लिए मध डाल दिया और मध डालकर उसे काजू किशमिश और थोड़ा सा बादाम भी डाल, बहुत ज्यादा बादाम डाल दिया, इतना स्वादिष्ट कि ब्राह्मण को तो बुलाए थे, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, कृष्ण का जय जयकार हो, कृष्ण का हित हो, कृष्ण धनवान बने, हाँ यशस्वी बने, पुत्रवान बने, ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिल रहे थे, वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यहां कृष्ण रो रहे थे। मां यशोदा ने सोचा ये बालक रोता रहेगा जैसे ये बच्चा रो रहा है, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा, मुझे उठाना पड़ेगा उसको। और ये 108 दिन का हो गया, 90 दिन तो हो गया, आज मैं इसे बाहर लेके जा सकती हूँ। और बीच बीच में यही नहीं, सारे गोपियां भी आएंगी और कहेंगे कि लाला को मुझे दो, तो डिस्टर्बेंस होगा, मैं खीर इत्यादि बना रही हूं। तो मां यशोदा ने आज के दिन पहली बार कृष्ण को महल के दरवाजे के बाहर, महल के जो बगीचा है वहां पे रखी। पर कहां रखो तो ये बहुत सुरक्षित रहेगा, सोचते सोचते हाँ ये जो सकट है, ये जो सकट यानी कि एक बैलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा, ये जो सकट है उसमें मिट्टी के उन जमानों में मिट्टी से खाते थे, जैसे आज हम लोग पेपर या प्लास्टिक में खाते थे और फेंक देते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में पकवान बनते थे। तो मिट्टी के मटके, मिट्टी के पुराने बर्तन रखे थे। चलो इस बच्चे को यहीं रख देता था, कृष्ण को वहीं रख दिया, कृष्ण अकेले थे मां यशोदा। और यहां पे मंत्रों का उच्चारण होने लगी, बहुत बहुत उच्चारण होने लगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बच्चे के हित के लिए मंत्र का उच्चारण हो रहा था। और ये ब्राह्मणगण मंत्र इत्यादि सुनकर अब कृष्ण सोचने लगे, मैं अकेला यहां क्या कर रहा हूं। तो कृष्ण भाई अकेले पड़े थे, पर यहां पे नंद महाराज व्यस्त थे, मेहमानों को समागतम पूजयति ब्रज कौशक, समागत जो भी थे उनको वस्त्र धन गव्य दे रहे थे। ब्राह्मण को गव्य देने के बाद बोले खूब खाए, खीर पिए, पायसम पिए, पराठा खाए, इतने खाए इतने खाए। ये ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, कर्म से भी ब्राह्मण है और मथुरा के ब्राह्मण है। मथुरा के ब्राह्मण का क्या कहना, वो खाते हैं तो खाते ही रहते हैं। एक बार एक सज्जन था, वो कहा कि आज मैं ब्राह्मण भोज कराऊंगा। मथुरा के एक ब्राह्मण को बुलाए तो बोला ठीक है मैं आऊंगा, जन्म और कर्म से ब्राह्मण है। तो अपने पेट को मल मल के बोला, देखो इस बार ब्राह्मण भोज में एक ही चीज चाहिए मुझे, मुझे देसी घी के बना ताजा बूंदी के लड्डू चाहिए। तो बोला ठीक है मंजूर। तो वो ब्राह्मण को दावत दिए, लड्डू का पहाड़ रखे और वो ब्रजवासी मथुरावासी ब्राह्मण खाते गए खाते गए खाते गए, इतने खाए इतने खाए, पहाड़ जो है जैसे गोवर्धन एक समय आसमान को छू रहा था तो अब कम हो गया, तो लड्डू का पहाड़ कम होने लग गया। खाते 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 वो सज्जन का पेट भर गया, फिर भी खाए गए, गले से भर गए, बेहोश होकर वहीं पे लेट गए। तब वो सज्जन जो था कहा कि हे ब्राह्मण देव, अरे ये क्या हाल हो गया आपका। वो खर्राटे ले रहा था, बोला ये क्या हाल हो गया, अरे इतना खाना चाहिए, अरे थोड़ा जगह बचाना चाहिए ताकि यहां से वापस आप मथुरा जाए। तो बोले कि ठीक है अब कोई बात नहीं, मेरे पास आयुर्वेद का वैद्य जी का स्पेशल टैबलेट है जिसे खाने से आप तुरंत सब चीज को पचा लोगे और फिर से ठीक होगा। तो ब्राह्मण सोते सोते लेते लेते कहा कि महाशय ये टैबलेट खाने के लिए अगर मेरे पेट में या शरीर में मुंह में जगह होता तो क्या मैं एक और लड्डू ना खा लेता। तो इतने ब्राह्मण खाने में पट्टू होते हैं, ये ब्राह्मण जो होते हैं खाने में भी पट्टू है, पचाने में भी पट्टू है, ऐसे ब्राह्मण है जन्म से और कर्म से, ऐसे ब्राह्मण है। पर वो खाते देशी घी का, देशी गाय के द्वारा दूध का घी। तो ऐसे खा के मस्त हुए ना। नंद महाराज ने कहा सब खा पी के सब तोहफा लेकर जा ही रहे थे, तब नंद महाराज ने कहा अरे 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 ऐसे कैसे जा रहे हो। तो बोला अब क्या बाकी रह गया। तो बोला ऐसे नहीं जाना चाहिए, अब इतना खाया इतना दान भी दिया तो आशीर्वाद भी तो देना चाहिए बच्चे को। तब ब्राह्मणों ने पेट को मल मल के कहा अब क्या आशीर्वाद देना, चलो हमारा ये आशीर्वाद है, उसने एक बार क्या करवट बदल दिया तो इतना सुंदर ब्राह्मण भोज, हमारा आशीर्वाद है बच्चा एक बार नहीं दो बार नहीं, दिन में चार चार बार करवट बदले, और चार चार बार करवट बदलने से हमको चार चार बार ऐसा दावत मिले, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ऐसा खूब खूब आशीर्वाद दिए ये ब्राह्मण। और यहाँ पे कृष्ण समझ गए ये जो संकट है इसमें एक राक्षस आके बैठा हुआ है, और ये जो राक्षस है ये मामा कंस के द्वारा भेजा नहीं गया है, ये राक्षस शकटासुर का रूप बनाया है। ये पिछले जन्म में हिरणाक्ष का बेटा उत्कचा था, इसका शरीर इतना भारी था कि बहुत उत्पात मचाता था। एक बार रोमहर्ष ऋषि के आश्रम में गए और उसके आश्रम में जाके गोल गोल घूमने लगे, उसके बगीचे में जितने भी वृक्ष थे वो सब तोड़ फोड़ दिए। रोमहर्ष मुनि को गुस्सा आया, कहा कि आपका शरीर इतना मोटा ताजा बड़ा, इसीलिए आपने इतना उत्पात मचाया, आपका शरीर इतना भारी है कि हमारे बगीचे को नाश कर दिया, आपका शरीर हल्का बन जाए अर्थात वायु का बन जाए। तो वो रोने लगा, रोमहर्ष ऋषि को दया आई वैष्णव में, तो कहा कि ठीक है आपका उद्धार तब होगा जब कृष्ण मथुरा से वृंदावन आएंगे, और वृंदावन में जब लीला करेंगे आप उन्हें मारने जाइए, कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो कृष्ण उस संत के वाणी को सच करने के लिए अब कहा कि मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लगी है, रोने लगे। कृष्ण को भूख लगा बच्चा है, पर नंद महाराज यशोदा मैया क्या कर रही है, पकवान बना रहे हैं और दावत दे रही है। नैव सुनो, न नहीं सुने, एव निश्चित रूप में नहीं सुने, सुनवाद वे रुदंतम, भगवान रोए, भगवान रोए। सुतस्य सा, किसका रोना, सुतस्य यशोदा मैया के पुत्र को, सुतस्य यशोदा मैया के पुत्र रो रहे थे, यशोदा मैया सुने नहीं। रुदंतम, क्यों रोए, रुदन स्तन आर्तित, क्योंकि उनको दूध चाहिए था और वो रोए रोए। मां यशोदा नहीं सुने, कोई भी सुने नहीं, नहीं तो कोई ना कोई गोपी आता, क्योंकि इतना सहनाई बज रही थी, इतना ढोलक बज रहे थे, इतने ब्राह्मण आए थे, सब चल रहा था ना कीर्तन इत्यादि मंत्र का उच्चारण, तो कोई सुने नहीं। तब कृष्ण इसलिए भी रोए क्योंकि ये जो भयावर असुर जो था वो आ गए और कृष्ण चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, पर कृष्ण के बात को कोई नहीं सुना। कृष्ण ने कहा अब ये केस मां यशोदा नंद महाराज अपने हाथ में नहीं लेंगे, इस केस को अब मैं अपने हाथ में लूंगा। तो कहा हाथ में, ये तो असुर है, मैं अपने हाथ से ये केस को नहीं सुलझाऊंगा, अपने पांव से इसको सुलझा दूंगा। और कृष्ण नाटक कर रहे हैं मानो कि उसको दूध चाहिए और मां से क्रोधित हो रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, चरण अपने चरणों को दोनों पांव को ऐसे ऐसे हिलाने लगे मानो कि दूध नहीं मिला इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है। वृद्ध उद शिपत गुस्से में पांव को पड़ के और सकट को ऐसा पांव लग गया तो पूरा सकट गिर गया और सकटासुर का वध हो गया। सकटासुर वायु रूपी देह को त्याग करके उसके आत्मा आकाश में गई, आकाश में जाकर वापस आए और कृष्ण के शरीर में लीन हो गया और सकटासुर का यहीं पे उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकटासुर का वध का ये कथा वास्तव में नवसिखिया भक्तों के लिए अर्थात जो भक्ति में आ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक अनर्थ होता है, जैसे सकट का अर्थ होता है और उसमें पुराने पुराने मटके इत्यादि रखे हैं, इसी प्रकार से जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हमारे पुराने आदत हमें सताते हैं, अर्थात चाय पीने की पुरानी आदत या कॉफी पीने का, सिगरेट इत्यादि, या सुबह देर से उठने का गंदे आदत हमें सताते हैं, हमें भक्ति को बाध्य कराता है। ये पुराने आदतों को भी, गंदे आदतों को भी लेकर हम कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं। कभी कभी निंदा करने का आदत होता है तो भक्तों का भी निंदा कर देते हैं, तो ये भक्ति में बाधक होता है। तो कहते हैं कि ये सकटासुर का वध का कथा जो 108 दिन के कृष्ण हुए रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत किए, सकटासुर को लात मारे, ये कथा अगर श्रवण करेंगे वो पुराने गंदे आदत जो है कथा में या लेक्चर में सोने का, तो वही गंदे आदत लेकर कथा में भी आकर हम सो जाते हैं। ये सट्टासुर के वध का कथा को अगर ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पुराने गंदे आदत जो है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सट्टासुर का वध कर दिया, इसी प्रकार से इस कथा को श्रवण करने से वो पुराने गंदे आदत का भी वध हो जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। ओत तानिका कौत सुखय मना मनस्विना, मनस्विनी का अर्थ होता है सबको तोहफा दिया। समागतम, जितने भी ब्राह्मण आए थे, मेहमान आए थे, उनका पूजा किया, पूजा यति ब्रज कौशक, इस प्रकार से किया। ना एव सुनद्वै रुदन्ति सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरण उदक्षित। भगवान रोए तो उसके ऊपर एक हाथ दिया, यह है सुखदेव गोस्वामी महाराज और यह है परीक्षित महाराज, उनका कथा में इतना प्रेम है। यही भगवान की भक्ति और कथा के प्रति हमें प्रेम हो जाएगा तो वास्तविक सुख का मन अनुभव करेंगे, सच्चा सुख का अनुभव करेंगे। नंदति 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 एव भोगरतो वा योगरतो वा संगरतो वा संग विहीन विहीन यश्य ब्रह्मणे रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोदमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोदमते। इस प्रकार से वास्तविक सुख जो है इस संसार के भोग में नहीं है, या इस संसार में योग इत्यादि करने में नहीं, या लोगों के संगति में पार्टी में वास्तविक सुख नहीं है, या अकेले में कहीं कोने में पड़े रहना इसमें नहीं है। यश ब्रह्म ने रमति चित्तम, जिसका मन भगवान में लग जाता है, नंदति 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 एव नंदति नंदति, वास्तविक सुख उसको मिलता है। संत कहते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो तीन बार कहते वास्तव में उसको असली सुख मिलेगा, असली सुख मिलेगा। उस असली सुख का आनंद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ले रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार से ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबोध करने वाली है कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया और उनके चरणा चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। अर्थात हम भी अगर उनके अनुयायी बनेंगे तो इस कथा में परमानंद लेंगे। नंदति 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 हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। आज का दिन बड़ा पावन है, अनेक अनेक लीला भगवान ने किया इस कार्तिक महीने में। आज गोपाष्टमी है, इसका भी लंबा कथा है, कम से कम 2 घंटा लगेगी, इतना रोचक है। भगवान रोज प्रातः ठीक 8 बजे गाय से दूध निकालते हैं, फिर वापस 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 10 बजे भगवान गोचरण के लिए जाते हैं। तो आज के दिन से गायों का चरण किए, इसका भी लंबा कथा है। इससे पहले भगवान वत्स चरण कर रहे थे, अर्थात बछड़ों का। गोष्ठाष्टमी है, श्रीनिवास आचार्य का भी पावनपति पवित्र त्रिभाव तिथि है। समय का अभाव है, वाणी को विराम देता हूं। आप लोग ध्यान से श्रवण किए, आपके आभारी। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।